नमो भगवते वासुदेवाय।
बोलिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरांधश ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आप सब जानते होंगे भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के बारे में। तो अभी 1 तारीख को सैटरडे है और 1 तारीख सैटरडे दिल्ली में रथ यात्रा का उत्सव है। भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जो रथ यात्रा है पुराने दिल्ली में है लाल किले के सामने। तो मैं सोच रहा था कि भगवान जगन्नाथ के बारे में उनका ये जो रथ यात्रा फेस्टिवल है उसके बारे में हम थोड़े समय के लिए चर्चा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य हैं वो कहा करते थे कि जो जगन्नाथ है वो पूरे जगत के नाथ है। किसके नाथ है? जगत के नाथ है। तो जब श्रील प्रभुपाद जगन्नाथपुरी पहुंचे अपने अमेरिकन डिसाइपल्स के साथ जब वो विदेश से आए थे, तो जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वहाँ उन्होंने एक चीज देखी कि वहाँ के जो मेन पुजारीज हैं जिनको पंडा कहा जाता है, इधर नॉर्थ इंडिया में पंडित जी कहते हैं, है ना, तो उनको इनवाइट करने आए मंदिर के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं कि स्वामी जी आपने कृष्ण भक्ति को पूरे विश्व में फैलाया, अमेरिकन निग्रो चाइनीज रशियंस अफ्रीकन्स सब लोग तिलक लगा रहे हैं, तुलसी माला पहन रहे हैं, सबके हाथों में जप माला है, सब कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं, पापमय कार्यों से दूर है, तो आप आइए जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं अकेले नहीं आऊंगा, मैं अपने भक्तों के साथ आऊंगा जगन्नाथ का दर्शन करने। किसके साथ? भक्तों के साथ, और उनके साथ उनके डिसाइपल्स थे, शिष्यगण थे जो अमेरिकन वगैरह थे। तो वो जब वहां गए तो उन पंडित ने कहा कि आप अंदर जा सकते हैं, मतलब आप जा सकते हैं, आपके लिए तो विशेष वहाँ अवसर है दर्शन आदि का, लेकिन आपके जो अमेरिकन डिसाइपल्स हैं वो अंदर नहीं जा सकते। और वहाँ बड़े अक्षरों में लिखा था ओनली हिंदूज आर अलाउड, केवल हिंदुओं को क्या है वहाँ प्रवेश है। इवन जब इंदिरा गांधी भी गई थी तो उसको भी उन्होंने वहाँ से भगा दिया था, उसको भी अंदर अलाउड नहीं किया। तो प्रभुपाद ने उस समय एक चीज कही, उन्होंने कहा कि ये जो जगन्नाथ ये कोई पंडानाथ नहीं है या ओरिसा के नाथ नहीं है, पुरी के नाथ नहीं है, ये कहाँ के नाथ है? जगत के नाथ है। तो हम भी अपने जीवन में यदि देखें, हम भी अपने जीवन में किसी ना किसी को नाथ बनाने के चक्कर में है, नहीं? नाथ मतलब स्वामी, पति, हस्बैंड, नहीं, मालिक। हम भी नौकर बनना चाहते हैं। इस संसार में जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है वो केवल एक ही चीज सोचते रहता है, कैसे मैं बेस्ट सर्वेंट बनूं, नहीं? लोग बच्चे पढ़ते कि नहीं तो उनको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए मेरे पास। आप सबको भी लगता होगा बनना है तो क्या बनना है? गवर्नमेंट का सर्वेंट बनना है। लेकिन हम यदि सोचे कब तक गवर्नमेंट का सर्वेंट है हम, नौकरी करनी है तो किसकी करनी है?
कृष्ण की।
किसके? हाँ, तो थोड़ा प्रभुपाद कहते थे थिंक बिग, क्या करो बड़ा सोचो। मनुष्य जीवन छोटी सोच के लिए नहीं है। हाँ, मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? बड़ा सोचने के लिए मिला है। और हम सोच रहे हैं कि मैं इसको अपना स्वामी बनाऊं, उसको अपना मालिक बनाऊं, मैं इसकी नौकरी करूं, उसका दास बनूं, उसका सर्वेंट बनूं। लेकिन हम वास्तव में अपने जीवन में ऐसे मास्टर को ढूंढ रहे हैं जो हमें सब प्रकार की सहायता करने के लिए तैयार है, या जो हमसे अत्यधिक प्रेम करे। मास्टर कौन अच्छा होता है? जो आपसे क्या करता है? अत्यधिक प्रेम करता है ना, जो पति या फिर पत्नी। तो जो अत्यधिक प्रेम करता है अपने आप को दे देता है उस व्यक्ति को, वो वास्तव में असली मास्टर है। इसलिए भागवत में वर्णन आता है प्रहलाद महाराज जो छोटे से बालक थे जिनके लिए नरसिम्हदेव प्रकट हुए हैं, तो नरसिम्हदेव ने कहा कि प्रहलाद तुम मुझसे मांगो जो मर्जी मांगो। भगवान तो भगवान का एक नाम है वरदराज, मतलब वर देने में जो राजा है। तो जब भगवान नरसिम्हदेव कहते हैं प्रहलाद मांगो, तो प्रहलाद कहते हैं मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं कोई व्यापार करने के लिए आपका भक्ति थोड़ी कर रहा हूं कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, ये भावना नहीं, स्वार्थ नहीं। कहते हैं मैं, क्योंकि जो असली स्वामी होता है वो अपने सेवक को कभी छोड़ता नहीं है, और असली सेवक अपने स्वामी को कभी भी त्यागता नहीं है। ये उन्नत संबंध का लक्षण है। और ये संबंध केवल हमें दिखाई देता है केवल भगवान और उनके भक्तों के बीच में। ये संसार के संबंध क्या है? केवल स्वार्थ पर निर्भर है। आज हमसे आज हमारा कोई मित्र है तो कल वो शत्रु हो जाता है। आज हम किससे प्रेम करते हैं तो परसों किसी और से प्रेम करने लगते हैं। ये भौतिक जगत का स्वभाव है। इसलिए आपने वो राजा भर्तृहरि के बारे में सुना होगा। हाँ, किंग भर्तृहरि थे। हम रिसेंटली उज्जैन गए थे कुछ महीने पहले, तो वहाँ उनकी गुफा में गया था देखने की क्या क्या वो राजा ने किया। तो उनके बारे में जब पढ़ रहा था तो उनका वर्णन आता है कि राजा भर्तृहरि जो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, ये जो राजा अपनी जो छोटी रानी है जिनका नाम था पिंगला, उससे अत्यधिक प्रेम करते थे। इतना प्रेम वो रानी कहेगी अभी दिन में, कहेगी कि अभी रात हो गई है, राजा क्या कहेगा? यस होम मिनिस्टर, क्या हो गया है? रात हो गई है। वो कहेगी रात्रि में 12 बजे कि अभी दिन हो गया है, तो राजा भर्तृहरि क्या कहेगा? अभी दिन हो गया है। मतलब 24 घंटे वो राजा केवल उसी के नामों का जप करता था, क्योंकि जप आपको किसी ना किसी का करना ही है कि नहीं? किसी ना किसी के बारे में आपको बोलना ही है, किसी ना किसी की आपको सेवा करनी ही है। लेकिन हम क्या हो चुके हैं, भौतिक संसार में आकर जिस व्यक्ति के नामों का जप करना है, जिसका गुणगान करना है, उसको छोड़कर संसारिक जीवात्माओं की सेवा में लगे हैं। तो राजा भर्तृहरि इतना पागल हो गया था, इतना बड़ा राजा था, इतना विद्वान भी था, लेकिन आसक्ति से ज्ञान क्या होता है? नष्ट हो जाता है, हर लिया जाता है अटैचमेंट के कारण, व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो ऐसे जब हो रहा था तो उनके राज्य में सब कुछ बड़ा खुशहाल था। एक ब्राह्मण उनके राज्य में निवास कर रहा था और बहुत निर्धन था, गरीब था। उस ब्राह्मण को उनकी पत्नी कहते कि देखो तो हम तो निर्धन है, हम जंगल में जाते तपस्या करते हैं, कुछ अर्जन हो जाए तो अच्छा है। तो ब्राह्मण और उनकी अपनी पत्नी को लेके वो जंगल में जाता है, कठोर तपस्या में लगते हैं। जैसे उन्होंने तपस्या की तो बिल्कुल कई महीने बीते हैं, वो बिल्कुल पतला सा हो गया था, मरने वाला था, निर्धन ब्राह्मण। पत्नी उनके साथ बैठ के तपस्या में लगी है, तो देवताओं को बड़ी करुणा आई। तपस्या से आप आकृष्ट कर सकते हो। तो जब करुणा आई, देवताओं ने कहा कि हम आपको एक फल देते हैं, और वो फल कैसा? उस फल का नाम था अमर फल, मतलब खाओगे तो आप अमर रहोगे और सदा जवान दिखोगे, यंग। आप सोचो ऐसा फल हमें यहाँ मिल जाए प्रसादम के समय, कितनी बड़ी लाइन, लंबी लाइन होगी। क्योंकि हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब क्या रहना चाहते हैं? यंग रहना चाहते हैं। कोई बूढ़ा होना चाहता है? जैसे एक अमेरिकन हीरोइन थी, वो उसने जब अपने शीशे में अपने आप को देखा, उसने एक बाल उसको दिखाई दिया कि सफेद हो गया है, तब से घर से बाहर नहीं निकली, उसका कैरियर वहां एंड हो गया। क्या नजर आ रहा था सामने? बुढ़ापा। क्या क्या नजर आ रहा था? बुढ़ापा, ओल्ड एज, कोई नहीं चाहता। मतलब बुढ़ापा को संस्कृत में कहते जरा, जरा नाम की ये युवती की तुलना भागवतम में, बुढ़ापे को जरा नाम की युवती से तुलना की गई है, और वो जरा नाम की युवती हरेक को आलिंगन करना चाहती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, मतलब हरेक को बुढ़ापे से गुजरना होगा। तो जब ये अमर फल जिसको खाकर हमेशा यंग रहा जा सकता है, और हम यंग बनने के लिए क्या क्या नहीं करते, प्रभुपाद कहते बूढ़े होने के बावजूद भी लोग कहां कहां जाते हैं अपने बालों को हमेशा काला रखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए ड्रेस भी वैसे ही रखना चाहते हैं, ओल्ड हो गए लेकिन यंग बच्चों यंग ड्रेस हम धारण करते हैं, नहीं जो यंग स्टार्स पहनते हैं। तो हमेशा, क्योंकि आत्मा ना बूढ़ा होता है ना मरता है, ये आत्मा का लक्षण है, वो हमारे अंदर वो चीज है, एक्चुअली आत्मा की भावना है, लेकिन ये शरीर हमें मिला ऐसा है जो बूढ़ा होता है। मरना हम क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम आत्मा मरता नहीं है, इसलिए वो भावना हमारे अंदर नहीं है। तो जब वो अमर फल उस देवताओं ने दिया, ब्राह्मण को तो बड़ा आनंद हो गया, लेकिन पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। पत्नी ने कहा देखो लंबी आयु का कोई लाभ नहीं है, जैसे भागवतम में भी कहा है, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं तरवा किम न जीवंती, तरवा मीन्स ये जो वृक्ष है वो भी तो जीवित रहते हैं। वृक्षों की आयु कितनी लंबी लंबी होती है, बोटेनिकल गार्डन में कई हजारों साल पुराने वृक्ष आदि है, तो वो वृक्ष इतने लंबे होकर भी क्या फायदा, उनको तो केवल खड़ा रहना है, सर्दी गर्मी झेलनी पड़ती है, कष्ट ही है एक प्रकार से। तो वो पत्नी कहती है लंबी आयु का क्या लाभ यदि हम भिखारी बने रहेंगे, अभी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, अच्छा ये फल किसको दे दो? राजा को दे दो, क्योंकि उनके पास धन संपदा सब कुछ है, युवा अवस्था भी है, वो आनंद उठा सकते हैं अपने जीवन का, और उनसे इसके बदले में कुछ धन मिले तो ले आइए। तो ब्राह्मण जाता है, उनको वो देता है। राजा जब अपने मंत्रियों के संग में बैठा था तो ये जाके उनको अर्पित करता है, राजा उसको स्वीकारता है। अमर फल को जैसे वो फल उसके हाथ में आया, राजा ने सुना कि ये तो ग्रहण करने मात्र से युवा बना जा सकता है, हाँ मृत्यु से दूर रह सकता है। जैसे ये आया, तब जैसे उसके हाथ में आया तो उसको किसका स्मरण हो आया? अपनी जो प्रिय रानी है, प्रियतमा जो रानी है उसका स्मरण हो आया, क्योंकि संसार में ये नेचर है, माता पिता के पास अच्छी चीज आती है तो माता पिता को सबसे पहले किसका स्मरण आता है? बच्चों का, आता है कि नहीं? क्योंकि नेचुरल फ्लो, जैसे पानी ऐसे टेढ़ा है तो पानी इधर ही बहेगा, जहां आपकी आसक्ति है वहां सारे विचार क्या होंगे? बहेंगे, सारी चीजें उस तरफ जाएगी जहां हमारे अटैचमेंट है। तो जो उसके हाथ में फल आया उसने सोचा, अरे मेरी रानी पिंगला बूढ़ी हो जाएगी, कैसे मैं सहन कर सकता हूँ? उसने सोचा कैसे मैं सहन कर सकता हूँ, ये फल तो मेरे रानी के लिए है, और उसने रखा। और फिर जब मंत्री सभा खत्म हो गई तो वो जब रानी के पास गया, पिंगला के पास, और उसने पिंगला को दिया, पिंगला वो जो रानी को दिया, जैसे उसने, और ये चाहता था कि उसके सामने खाए, लेकिन उन्होंने कहा ये इतना महान फल है, इसको तो गंगा स्नान करने के बाद खाना चाहिए। और वो पिंगला रानी ने भी वो अपने पास रखा। ऐसे कुछ दिन बीते, तो एक दिन राजा जब अब महल में था, इसमें था सभागृह में, तो उस समय अचानक एक सुंदर स्त्री को उन्होंने देखा जो उनके सभागृह में प्रवेश कर रही थी, सारे मंत्रीगण बैठे हुए थे, और वो आकर वो एक फल लेके आई, और वो फल किसको दे रही थी? राजा को दे रही थी। और वो जैसे वो फल देखा, वो फल कौन सा था? यही फल था जो किसने दिया था? इसने अपने रानी को दिया था। और जैसे ये वेश्या थी जो आए थे, उसने वो फल राजा को अर्पित किया, राजा को जैसे फल वो मिला, राजा ने देख, उस वेश्या ने कहा तो अमर फल है, आप ग्रहण कीजिए, तो राजा का दिमाग में क्या हो गया? प्रकाश। और उसको इतना शौक लगा कि उसका चेहरा पीला पड़ा,
उसने कहा कि ये फल ओरिजिनली मेरे पास आया था और मैंने किसको दिया था, अपनी रानी को दिया था, पिंगला को। उसको सारा प्रॉब्लम भौतिक जगत का समझ में आ गया, सारा चक्कर समझ में आ गया, सांसारिक प्रेम स्वार्थ। जैसे उस पिंगला के पास आया था, पिंगला के हाथ में आया तो पिंगला रानी जब राजा ने दिया, उसने तो बहाना मारा था कि मैं तो स्नान करके खाऊंगी गंगा स्नान, लेकिन उसके हाथ में आया तो वो किसी और से प्रेम करते थे। हाँ, वो किससे, दरोगा जो घोड़े की देखभाल करता था, रानी उससे प्रेम करती थी। और इसने सोचा ये फल तो उसके लिए है, उसके लिए हो सकता है। उसको बुलाया रानी ने प्राइवेटली और उसको दे दिया फल, और उसने कहा कि आप मेरे सामने खाओ। तो वो जो दरोगा घोड़ों का देखभाल करने वाला, उसने कहा इसको ना स्नान आदि करके खाना चाहिए, मैं बाद में खाता हूँ। उसके हाथ में आया वो फल तो वो किससे प्रेम कर रहा था, उस वेश्या से। उसने सोचा वेश्या वो मेरी प्रेमिका है, वो हमेशा युवा रह सकती है, मेरे लिए अच्छा है, तो बेस्ट क्या है, मैं उसको अर्पित करूं। हाँ, तो ये जब उस वेश्या के पास वो फल गया तो बहुत बुद्धिमान थी, उसने कहा कि मेरा जीवन तो वैसे इतना गंदा है, तो बेस्ट क्या है, कि क्या लाभ, मैं जीवित रहूं लंबे समय के लिए, युवा रहूं, ऐसे जीवन का कुछ लाभ नहीं है, अच्छा है कि ये फल किसको देना चाहिए, राजा को देना चाहिए। इस प्रकार से भौतिक जगत का जो प्रेम है, भौतिक जगत की जो कार्यकलाप है, वो केवल स्वार्थ पर निर्भर है। और हम इस संसार में वास्तव में अपने जीवन में किसी न किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई मेरा मास्टर बने, या किसी न किसी को ढूंढ रहे हैं जिससे मैं अपना हृदय क्या करूं, अर्पित करूं। क्योंकि हर जीव 100% किसी न किसी से प्रेम करना चाहता है। कितने प्रतिशत? 100%। ये नेचर है, सोल का ये नेचर है, आत्मा का ये स्वभाव है, और इसको आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन उसको वो पर्सन नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ लव, जिसे कहते ना प्रेम के जो विषय है, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए सारा जीवन व्यक्ति ठगा के ठगा रहता है। युवा अवस्था आती है, बूढ़ा हो जाता है, मरने लगता है, आखिरी सांस गिनता है, तभी भी वो सोचता है नहीं नहीं अरे मैंने जीवन अपना व्यतीत कर दिया। इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान बनो। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि सारे भौतिक धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण ग्रहण करो ना, क्यों पागल के भांति इस संसार में भ्रमण कर रहे हो, अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, गीता का अंतिम उपदेश, जिसमें कृष्ण एक प्रकार से आश्वासन देते हैं। भगवान कहते हैं डरो मत, मुझसे प्रेम करके देखो, मेरी सेवा करके देखो। इस संसार में हम कितने सेवा और किससे प्रेम करते हैं, वो सारा जुए के समान है। उसमें हारना क्या है, पहले से कंफर्म है, उसमें हार आपकी निश्चित है। इसलिए भगवान हमें प्रेरित करते हैं कि अपने जीवन में कृष्ण को हम अपना मास्टर बनाएं। हम क्यों मोहल्ले के या गले के कुत्ते के भांति घूमते रहे, कोई भी उसको उठा के क्या मारता है, पत्थर मारते रहता है। लेकिन जिस कुत्ते के गले में क्या है पट्टा है, उसको कोई पत्थर नहीं मारेगा, थोड़ा सा डर के चलेंगे। तो इसलिए हमें कुत्ता बनना ही है, क्योंकि कुत्ता मीन्स नौकर। कुत्ता हमेशा दुम हिला के अपने मालिक के पीछे क्या करता है, घूमता रहता है, और वो दो पाव खड़े करके उसको प्रणाम भी करता है, उसको नमस्कार करता है, और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो नौकर बनना है, कुत्ता बनना ही है, प्रभुपाद कहते, तो किसका बनो, कृष्ण का बनो। इसलिए जितना जीवन बचा है, जितनी सांसें बची हैं, वो सांसें किसके लिए रखो, कृष्ण की सेवा के लिए रखो। हाँ, तो आप देखो, हाँ, कृष्ण के आंखों में आप एक हीरे के समान चमकने लगेंगे। तो वैसे ही भगवान सारे जगत के नाथ है, तो हमें भी नाथ ढूंढना है। तो वो नाथ कौन है, जगन्नाथ है, नहीं तो हम सब क्या होंगे, अनाथ कहलाएंगे। तो अनाथ नहीं रहना चाहिए हमें, अनाथ मीन्स गले का कुत्ता, सनाथ मीन्स जिसके गले में पट्टा है। तो किस सबके गले में है पट्टा, जो कि हम सबने डाला है, किसके किसके गले में है, कौन कौन डालना चाहता है, हाथ ऊपर कीजिए, सबको डालना चाहिए, क्या सबको हाँ, जैसे जो विवाहित स्त्री है उसके गले में मंगलसूत्र होता है, अभी आजकल तो मुझे दिखाई नहीं देता लेकिन हम जब छोटे थे तो गांव में देखा करते थे। विवाहित स्त्री मीन्स क्या, माथे में सिंदूर और गले में क्या, पट्टा। पट्टा मीन्स वो मंगलसूत्र। तो अभी तो मॉडर्न कल्चर आ गया है, तो उसी प्रकार से भगवान हमें एक पट्टा देते हैं, तुलसी, गले में तुलसी और हाथ में भी क्या, माला, तुलसी माला पर हरि नाम का उच्चारण करें। क्योंकि जो वफादार कुत्ता होता है वो स्वामी के लिए भौंकता है ना, स्वामी की रक्षा के लिए क्या करता है, भौंकते रहता है। तो हमें भी भौंकना है तो क्या भौंकना है, हरे कृष्णा जोर से, और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी कारण से ये, इसलिए भगवान हमें फोर्स नहीं करते। भगवान क्या नहीं करते, कभी भी फोर्स नहीं करते, कृष्ण का ये नेचर है। क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता है और आप फोर्सफुली किसी से ये नहीं कराओगे कि आप मुझसे प्रेम करो, डांट फट करके अभी कल से क्या करो आप मुझसे प्रेम करो, नहीं, स्वाभाविक नेचुरल। तो भगवान हमसे प्रेम करवाना चाहते हैं लेकिन कैसे, हाँ, स्वाभाविक रूप से। तो हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रीति है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराय उदय। हर एक जीव के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन वो कैसे बाहर निकलेगा, जैसे केला है, केले के छिलका है ना, केले के छिलका निकालो तो क्या मिलेगा आपको, केला। वैसे हर जीव के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है लेकिन उसके लिए निकालना पड़ेगा, वो ढका हुआ है छह चीजों से, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि से। तो वो कैसे निकलेगा बाहर, जब श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, नियमित रूप से व्यक्ति भगवान के गुणगान को सुनता है। इसलिए गृहस्थ के लिए कई सारे ड्यूटीज है, कर्तव्य है शास्त्र में, गृहस्थ धर्म है। पहला धर्म है उसका कि सदैव गृहस्थ को भगवान के बारे में सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इसलिए तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि साधु लोग घर में आते हैं उनका अपना कोई हित नहीं होता, ऐसे नहीं को भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, वो कहते हैं वो आते हैं केवल उतने समय तक रुकते हैं जितने समय में गाय का दूध निकालने में लगता है, और उसमें वो क्या करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। और गृहस्थ व्यक्ति जो हमेशा बिजी रहता है, उसका जीवन क्या है, हमेशा बिजी है, उसके पास अपने लिए सोचने के लिए कोई समय नहीं है, उसको जगाते हैं, जीव जागो, महाप्रभु भी आते हैं और वो भी बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि पहला कर्तव्य है कि उसको आलसी नहीं होना चाहिए, कृष्ण के बारे में सुनने के लिए सदैव उत्साहित रहना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, वो कहते हैं कि उसे गृहस्थ को नियमित रूप से भगवान के नामों का जप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए, ये उसके लिए अति आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक, हरि नाम का जप करे किसी भी सिचुएशन में हर रोज। क्योंकि उसको भगवान का स्मरण होना बहुत कठिन है, क्यों, उसके जीवन में असंख्य चिंताएं हैं। क्या है उसके जीवन में, चिंता है, गृहस्थ में ग्रसित रहता है चिंताओं से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इसलिए वो जब सुनता है, जो हम सुनते हैं उसी का चिंतन करते हैं, नहीं, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, टेलीविजन में लोग देखते हैं, उसी का दिन भर मित्रों के साथ बातें करते रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे, उसी चीज का चिंतन करते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को, एक गृहस्थ को ये दो चीजों के लिए प्रेरित करते हैं। और तीसरी चीज कहते हैं कि उसे कृष्ण भावना के लिए अपना धन क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि जहां धन वहां मन, जहां धन जाएगा वहां मन जाएगा। तो इसलिए हमें एक गृहस्थ व्यक्ति के कर्तव्य का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। युधिष्ठिर महाराज को नारद बताते हैं ये सब, युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं मुझे सारे ड्यूटीज बताओ, गृहस्थ के क्या ड्यूटीज है, ब्रह्मचारी के क्या है, सन्यासी के क्या है, वानप्रस्थ के क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन सब के ड्यूटीज का वर्णन नारद करते हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति को सदैव तत्पर होना चाहिए कि किस प्रकार से मैं अपना इस प्रकार से जीवन यापन करूं जिससे मेरे जीवन में कृष्ण की सेवा, कृष्ण का स्मरण अत्यधिक हो सकता है। तो भगवान आते हैं अलग अलग रूपों में, ये जगत में प्रकट होते हैं, और उनका एक विशेष रूप कौन सा है? जगन्नाथ का है। किसने किसने देखा है जगन्नाथ देव का विग्रह? यहाँ है शायद, है ना? तो जगन्नाथ जी कोई दिखा सकता है? बड़ा करके दिखाइए। तो आप देखेंगे, जब मैंने पहली बार मैंने जगन्नाथ जी को देखा मुंबई में, मेरा पहला रथ यात्रा था, तो मैंने देखा ये भगवान ऐसे भी कैसे हो सकते हैं, ये ऐसी बड़ी बड़ी आंखें और हाथ नहीं, पांव नहीं है उनको, हाथ है, उनके साथ कौन बैठी है? वो बीच में पीली कलर की और साइड में व्हाइट कलर की, और भगवान कैसे ब्लैक, ब्लैक लोटस। सोचो कृष्ण लोटस भी कैसा है? ब्लैक। लेकिन लोटस हमेशा क्या होता है? सुंदर ही होता है, व्हाइट तो होता ही है या फिर रेड है। तो लेकिन जगन्नाथ जी ब्लैक है, कलर में कैसे है? ब्लैक है, श्याम वर्ण, कृष्ण का वर्ण श्याम है। जो नया नया बादल आता है जिसमें जल भरा होता है, वो जो वर्ण है वो कृष्ण का है। तो भगवान जगन्नाथ प्रकट होते हैं एक महान राजा के लिए, जिनका नाम क्या था? इंद्रद्युम्न। वो राजा अवंतीपुर उज्जैन के राजा थे, और वो राजा का इतना विशाल महल था जहां वो अपने रानी के साथ निवास करते थे, उसके साथ ही एक उन्होंने एक हॉल सा रखा था जिसमें कोई भी यात्री, कोई भी साधु उनके आता था राज्य में, उसको रहने के लिए स्थान था बिल्कुल उनके अपने कमरे के साथ। तो राजा निरंतर इन साधुओं से कृष्ण कथा सुनता था अपने रानी के साथ। एक रात्रि में उस राजा ने सुना दो साधु आपस में चर्चा कर रहे हैं भगवान के बारे में। एक कह रहा है कि मैं अभी अभी एक स्थान से आया हूँ, नीलाचल से आया हूँ, उड़ीसा में वो स्थान है, वहां मैंने साक्षात परब्रह्म कृष्ण को देखा है, वहां अभी वो नित्य विद्यमान है। तो जब ये राजा ने सुना तो राजा दूसरे दिन ढूंढने लगा कौन है वो साधु ट्रैवलर जो ये चर्चा कर रहा है। तो व्यक्ति तो चला गया था, तो फिर राजा के अंदर ये सुनकर ही इच्छा जागृत हो गई कि मुझे भी उन परम भगवान का क्या करना है? दर्शन करना है, देखना है, उनकी सेवा करनी है। तो राजा अपने कई सारे अलग अलग मंत्रियों को, लोगों को भेजता है भगवान को ढूंढने के लिए, और फाइनली वो ढूंढ लेते हैं कि ओडिशा में नीलाचल जगन्नाथपुरी जो स्थान है वहां भगवान नील माधव के रूप में निवास करते। मैं जस्ट समराइज कर रहा हूं आपके लिए। तो वहां ये राजा जब पहुंचता है तो देखता है कि भगवान नील माधव के रूप में थे, नील वर्ण था उनका, चतुर्भुज रूप में माधव कृष्ण। तो लेकिन जब राजा निकलने लगा, राजा ने कहा कि मैं अपने सारी चीजों को छोड़कर वहां जाना चाहता हूँ, भगवान का दर्शन करके उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो उनकी पत्नी ने कहा मैं पीछे रह के क्या करूं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उनकी पत्नी का नाम क्या था? गुंडीचा। क्या नाम था? राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा। और फिर इन दोनों को देखा कि जा रहे हैं, तो सारे उज्जैन जिसको अवंतीपुर कहते हैं, पौराणिक नाम है उस सिटी का, तो कहा उन सब जो प्रजा थी उन्होंने कहा हम क्या करें यहाँ रह के? प्रजा ने कहा हम सब आपके साथ आएंगे। तो सारे प्रजा ने अपना बैग पैक किया और सारे चल चल के अवंतीपुर एमपी से कहा पहुंचे, ओडिशा पहुंचे। तो वहां गए, पहुंचते कि नहीं तो पता चला कि भगवान उस स्थान से आप प्रकट हो गए हैं नील माधव। और फिर राजा बहुत दुखी हुआ। तो फिर भगवान, राजा जब दुखी हो रहा था, राजा ने सोचा मेरा जीवन का क्या लाभ, हाँ ये मनुष्य जीवन का, यदि भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। भगवत सेवा के बिना मनुष्य का जीवन शून्य के समान है, या कुत्ते और बिल्ली के समान है, शास्त्र कहते हैं। केवल वो जीवित रहता है अपने पेट पूजा करने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान, तीन चीजों के लिए जीवित है व्यक्ति। सोचो यदि गंभीरता से कोई व्यक्ति विचार करे तो हम अपना जीवन गवा रहे हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हो गए, उन्होंने सोचा मैं अपना जीवन अभी त्याग दूंगा। तो उन्होंने फास्ट करना शुरू किया, उपवास, कि मरना चाहता हूं। तो उस समय नारद आए, नारद ने उनको प्रेरित किया आप यज्ञ करो।
और भगवान स्वप्न में कहते हैं कि मैं प्रकट होऊंगा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में। तो भगवान राजा इंद्रद्युम्न के लिए उस स्थान में प्रकट होते हैं जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के रूप में। तो जब ये भगवान प्रकट हो गए तो राजा को भगवान कहते कुछ मांगो मुझसे। तो इंद्रद्युम्न ने क्या मांगा होगा बताइए, सोचो आपके सामने आपका पीएम खड़ा हो जाए यहाँ, वहां से चल चल के यहाँ आ जाए और आपको कहिए बताइए क्या चाहिए मेरे प्रजाजनों, आपको क्या चाहिए मांगिए। तो आप क्या मांगेंगे उनसे? हमारे दामोदर प्रिया को कहेंगे मुझे छुट्टी चाहिए, परमानेंटली प्रचार करना है, यात्रा करनी है। आप क्या मांगेंगे? प्रमोशन दीजिए मुझे, नहीं भक्ति भक्ति नहीं मांगेंगे हम। वैसे सोचो भगवान हमारे सामने आ जाए तो भगवान से क्या मांगेंगे हम? भगवान से तो हम भौतिक चीजों की याचना करेंगे। एक राजा थे जिनका नाम था पृथु, क्या था महाराज पृथु, जब भगवान उन्होंने यज्ञ किया और भगवान विष्णु प्रकट हो गए तो भगवान ने कहा राजा मांगो मुझसे कुछ। तो उन्होंने क्या मांगा होगा आप सोचिए क्या मांगा होगा? हाँ वो कहते हैं कि हे कृष्णा आपके जो भक्त हैं आपके चरण कमलों की महिमा का गुणगान करते रहते हैं, आपकी कथा अमृत के समान है जिसका वर्णन करते रहते बोलते रहते हैं और वो ऐसा अमृत है कि मेरे दो कानों से पिया नहीं जा सकता, दो कान बहुत है मुझे 10 लाख कान चाहिए। कितने? ऐसे किसने मांगा? राजा पृथु ने। आप सोचो हमें अपने दो कानों से इतना प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाते रहते ENT के पास है कि नहीं, लेकिन राजा कितने कान मांग रहा है? 10 लाख, क्योंकि कृष्ण कथा अमृत इतना शक्तिशाली है इतना नेक्टरियन है कि उसको मैं क्या करना चाहता हूँ 10 लाख कानों से केवल सुनते रहना चाहता हूँ बस। तो वैसे ही इंद्रद्युम्न राजा इतने बड़े थे जिन्होंने भगवान के लिए इतना विशाल मंदिर बनाया। आज भी आप जगन्नाथपुरी जाते हो, कितने लोग गए जगन्नाथपुरी? आधे से कम बस। ऊटी मनाली कितने लोग गए हैं? वहां शिमला वगैरह क्या है मुझे नाम भी पता नहीं है। तो वैसे शास्त्र कहते हैं गृहस्थ व्यक्ति को अपने परिवार के साथ साल में 2 बार स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाना चाहिए। कितनी बार? 2 बार, ये बनाना ही चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? भौतिक आसक्ति कम हो जाती है और भगवान से प्रीति बढ़ने लगता है। नहीं तो फिर हॉस्पिटल में जाना होता है, हम सोचते ना अरे कहाँ जाएंगे वृंदावन, पैसे सेव करो। तो भगवान कहाँ में उतरते हैं फिर? हॉस्पिटल में जाओ, कोर्ट में जाओ, यहाँ वहां गवा देते हैं। तो इसलिए बेटर है कहाँ भागो? वृंदावन जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, मायापुर जाओ। तो इस प्रकार से वो इंद्रद्युम्न ने बहुत विशाल मंदिर बनाया और लेकिन वो मंदिर टूटने के बाद अभी 1100 साल 1200 साल पुराना मंदिर है ओडिशा में जगन्नाथ का। तो राजा इंद्रद्युम्न ने 3 चीजें मांगी भगवान से। कितनी चीजें मांगी आप सोचो, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले राजा इंद्रद्युम्न ने मांगा कि भगवान मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। क्या मांगा? चाणक्य पंडित कहते हैं पुत्र हीनम ग्रहम ही शून्यम, ग्रह शून्य है यदि उसमें कौन नहीं है? पुत्र नहीं है, बच्चे नहीं है, तो घर क्या है? शून्य है। तो इन्होंने कहा पुत्र नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र हो जाए तो इतना सारा ऐश्वर्य है, इतना विशाल मंदिर, धन संपदा आदि, वो कहेगा ये सारी मेरी है और वो अपनी भोग के लिए यूज करेगा और आपकी सेवा वो भूल जाएगा, इसने मुझे क्या नहीं चाहिए कृष्णा। भगवान को रोने लगे जगन्नाथ, क्या रोने क्या करने लगे, बोले इतना प्रेम मेरे लिए। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ। इसलिए भगवान अपना मंदिर छोड़ के 7 दिन के लिए जाते हैं राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा के घर में जाके रहते हैं। जगन्नाथपुरी में और एक टेम्पल है उसका नाम क्या है? गुंडीचा मंदिर, जो किसका स्थान है? ये राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा का है। वहां जाकर भगवान क्या करते रहते हैं, इसलिए वहां वहां के लोकल लैंग्वेज में उसको मौसी का मंदिर कहते हैं, मौसी माँ का मंदिर। मतलब भगवान अपने स्थान को छोड़ते हैं, भगवान कहते तो मैं हम दोनों तुम्हारे पुत्र हैं, जगन्नाथ और कौन? बलराम, कृष्ण और बलराम, और जाके वहां निवास करते हैं। तो भगवान पुत्र बन जाते हैं उनका। दूसरी चीज वो कहते हैं, इंद्रद्युम्न उनसे मांगते हैं
कि आपके जो उंगलियां हैं वो हमेशा गीली रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? आप सोचो, अभी आप उंगलियों से प्रसाद खाते हो, हाथ से, चम्मच से खाते हैं कि कैसे खाते हैं? उंगलियों से खाते तो गीली हो जाएगी ना, और पानी नहीं हो धोने के लिए तो क्या रहेगी? हमेशा गीली रहेगी और फिर ड्राई हो जाएगी। तो ऐसे नहीं, उन्होंने कहा कि पूरे दिन आपकी उंगलियां गीली रहे, मतलब पूरे दिन आपको जो हम भोग बनाएंगे उसको खाते रहना चाहिए। तो जगन्नाथ जी को एक समय में इतना भोग लगाया जाता है कि 25,000 लोग खाते एक समय में। कितने? 25,000 खा सकते, इतना एक समय में जगन्नाथ जी को भोग ऑफर होता है। आप सोचो, मतलब राजा चाहता था कि जगन्नाथ जी, कृष्णा मैं आपकी सेवा निरंतर करना चाहता हूं। हम तो भागते हैं भगवान के लिए, थोड़े से लड्डू गोपाल लोगों के घर में है ना, कितने लोगों के घर में है? लोग जब कहा वृंदावन वगैरह जाते हैं, कुछ नहीं तो चलो मैं बड़ा धार्मिक हूं तो लड्डू गोपाल को लेके आते हैं, लाके कहा रखेंगे एक कोने में जो किसी को दिखाई ना दे, और अपने लिए लड्डू गोपाल को लाएंगे लेकिन कभी उनके लिए लड्डू नहीं बनाएंगे, अपने लिए लड्डू बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। लड्डू गोपाल भगवान आपके लिए बस क्या क्या खिलाते, मिश्री थोड़े से आपके लिए, मिश्री या थोड़े से ड्राई फ्रूट, थोड़े से दो तीन रख देंगे भगवान, एक हफ्ते का आपका हो गया। और मैं सुबह शाम ब्रेकफास्ट लंच डिनर मैं भोगता हूँ, मैं घर का भगवान हूँ, आप भगवान नहीं हो। हाँ, तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति है। कौन सी प्रवृत्ति है? आसुरी। भगवान मीन्स सेवा। हाँ, भगवान को लाना मीन घर का केंद्र बिंदु बनाना, उनकी सेवा करना। तो इंद्रदुम्न आलसी नहीं थे कि अरे कौन आपके लिए कुकिंग करेगा। हाँ, क्या है, कौन आपके लिए कुकिंग करेगा? वो तो तैयार थे कुकिंग के लिए। और फिर इंद्रदुम्न ने तीसरी चीज मांगी। क्या तीसरी चीज मांगी? कि भगवान आपके जो मंदिर के द्वार है वह हमेशा हमेशा के लिए खुले रहे। इसलिए आप जगन्नाथपुरी जाते हो तो भगवान के दर्शन आप रात 11 बजे भी जाओगे तो भी कर सकते, 12 बजे भी जाओगे तो भी कर सकते, 1 बजे भी जाओगे तो भी कर सकते। मतलब वो चाहते थे, इंद्रदुम्न राजा का हृदय बड़ा उदार था। महानता क्या है कि आपके पास कितनी चीजें हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखती, आप कितना क्या करते हो दूसरों को देते हो, है ना। कोई कह सकता कि मेरे पास ये चीजें, बड़ा धन है, ऐश्वर्य है, फैसिलिटी है, उतना बड़प्पन नहीं है, जितना आप क्या करते हो उसको बांटते हो, देते हो। वैसे इंद्रदुम्न ने अपने लिए नहीं, बल्कि उन्होंने ये सारी चीजें दूसरों के लिए, भगवान सारे जीव इस जगत में सड़ रहे हैं वो आपका दर्शन करेंगे, वो इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, सारे पाप और कर्म फलों से मुक्त होंगे। इसलिए राजा इंद्रदुम्न ने कहा कि आप यदि दिन भर खाते रहेंगे भोग तो वो प्रसाद कौन खाएंगे? सारे जीव उसको ग्रहण करेंगे। इसलिए भगवान के जो राजा इंद्रदुम्न है यूनिक डिवोटी है जगन्नाथ के, वो सब कुछ दूसरों के लिए। इसलिए हम सुखी क्यों नहीं है, जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने लिए जी रहे हैं, दिन रात अपने बारे में सोचते रहते, मैं और मेरा परिवार बस, उसके अलावा हमारा दिमाग बुद्धि काम नहीं करता है। इसलिए हम और अपने परिवार में हमेशा दुखी अवस्था में रहते हैं, हमेशा अंदर से रोते रहते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? हृदय को खोल देना चाहिए। इसलिए भगवान हमेशा दुरात्माओं का वर्णन नहीं करते, हमेशा महात्माओं का वर्णन करते। और महात्मा कौन है? महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। महात्मा वो व्यक्ति है जो भगवान की जो आध्यात्मिक प्रकृति है उसकी शरण ग्रहण करता है और निरंतर कृष्ण के कीर्तन आदि की सेवा में लगा रहता है। इसलिए भगवान राजा इंद्रदुम्न के लिए आए और वो अपना मंदिर छोड़कर बाहर जाते हैं। किसके लिए? भक्त सुख देते। रथ यात्रा का मतलब है कि भगवान अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकलते हैं सारे जीवों को दर्शन देने के लिए। और शास्त्र कहते हैं कोई व्यक्ति देखता है कि भगवान रथ पर आ रहे हैं सुभद्रा देवी और बलराम के साथ, ये देखकर केवल अपने जगह खड़ा हो जाता है। केवल क्या होता है? खड़ा हो जाता है, वो व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है, सारे पापों की राशि खत्म होती है। भगवान उस व्यक्ति के पाप चाहे कितने पहाड़ के समान क्यों ना हो, लाइफ में कष्ट क्यों है? क्योंकि पापों के रिएक्शंस है। तो पाप पहाड़ के समान क्यों ना हो, भगवान सारे पापों को एक मस्टर्ड सीड के समान बनाते, पकड़ते और समंदर में फेंक देते। कहाँ फेंक देते?
समंदर वैसे कृष्ण है। कर्म निर्दहति किंतु च भक्ति बाजाम, कर्मानि निर्दहति, दहति में जला देते हैं उन कर्मों को। तो शास्त्र कहते जगन्नाथ को रथ के ऊपर देखना ये परफेक्शन है। हाँ, तो ये अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली के सड़कों में सैटरडे भगवान कहाँ निकलने वाले, रथ के ऊपर निकलने,
और उनकी रस्सी को खींचना तो फिर कहाँ जाए। कोई व्यक्ति उनके रथ के पास जाता है और रस्सी को खींचता है, मतलब वो व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में खींच रहा है। कहाँ खींच रहा है, हृदय में। रस्सी को खींचना मीन्स हृदय में खींचना। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये मौका, वास्तव में जगन्नाथ का नाम जगन्नाथ सार्थक किसने कराया, उनके भक्त प्रभुपाद ने। पहले तो केवल पंडानाथ थे, ओडिशा नाथ थे, हमने भी कभी जगन्नाथ नाम सुना नहीं था। हा? तो इसलिए भगवान और भक्त के बीच में हमेशा कंपटीशन चलती रहती है। भक्त भगवान को सारे जगत में फैलाना चाहता है और भगवान भी अपने भक्त का गुणगान सारे जगत में करना चाहता है। तो प्रभुपाद ऐसे महान आचार्य थे, उन्होंने जगन्नाथ को पूरे विश्व में ले गए। आप अभी अफ्रीका के गांव में भी जाओगे तो वो अफ्रीकन लोग वो सोचते हैं कि ये हमारे कलर के हैं। एक डिवोटी बता रहे थे अफ्रीकन जैसे काले होते हैं ना, वो कहते हैं हमारे भगवान है, क्योंकि ये कैसे है, ब्लैक है, काले है। तो इस प्रकार से वहां भी लोग रथ यात्रा मनाते हैं कई सारे देशों में। तो भगवान आते हैं रथ के ऊपर और प्रभुपाद ने अपने भक्तों को जगन्नाथ का एक मंत्र सिखाया। प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो एक बार उनकी एक शिष्या थी जिनका नाम था मालती, उनके पति थे जिनका नाम था श्याम सुंदर। तो स्वामी जी जब सैन फ्रांसिस्को में आए, सबसे पहला मंदिर न्यूयॉर्क में बनाया जहाँ कोई विग्रह नहीं थे, फोटोज थे। लेकिन प्रभुपाद जब सैन फ्रांसिस्को गए तो वहां उनको मिलने मालती आए, जो मालती एक इंडियन स्टोर में गई थी। उनको लगे स्वामी जी इंडिया से है तो उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाती हो। तो इंडियन स्टोर में गई तो वह इंडियन डॉल्स थे, तो एक डॉल को उठाया और वो गई, स्वामी जी आपके लिए इंडिया का गिफ्ट है। स्वामी जी ने देखा ये क्या है, ऐसे उसके हाथ में था। स्वामी जी प्रभुपाद ने देखा तो दंडवत प्रणाम किया। कौन सा प्रणाम किया, दंडे के समान गिर गए, प्रणाम किया। वो जो शिष्या थी वो अचंभित हो गई, ये क्या हो गया। उन्होंने कहा ये कहां से मिले, ये तो जगत के नाथ है, जगन्नाथ है। उनके हाथ में कौन थे, जगन्नाथ जी। उनको लगा भारत का कोई डॉल है, वहां लिखा था मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया लिखा था, तो उठा के ले आई दुकान से। फिर प्रभुपाद ने कहा ये अकेले नहीं हो सकते, इनके साथ दो और होंगे, एक येलो कलर वाली और दूसरा व्हाइट, बलराम। वो दौड़ के अपने पति के साथ गई, श्याम सुंदर के साथ, इंडियन स्टोर में। वो अमेरिकन से दोनों गई और वहां से देखा और दो है, दो भी खरीद के लाए और प्रभुपाद को दिया। प्रभुपाद खुश हो गए, इतने छोटे से थे। प्रभुपाद ने कहा आप में से कोई है जो इनको बड़ा बना सकते हैं कार्विंग करके, कारपेंटर कोई है। तो उनके पति जानते थे कार्विंग करना। उन्होंने कहा स्वामी जी मैं करूंगा। तो फिर उन्होंने कुछ दिनों में बना दिए और इतने सुंदर। फिर प्रभुपाद ने कहा भारत में बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं जहां जगन्नाथ की स्थापना की जाती है और सेवा की जाती है। अभी अमेरिका में पहले विग्रह इस्कॉन में प्रकट हुए, वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो प्रभुपाद ने उनको स्थापित किया और स्थापित करने का कोई विधि नहीं था, कैसे करेंगे वहां। तो वहां तो केवल प्रभुपाद ने उनको रखा और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और उनको सिखाया। उन्होंने पूछा इनकी सेवा कैसे की जाती है, वो सारे अमेरिकन उनको क्या पता कैसे क्या करना है। तो इन्होंने कहा एक कर सकते हो, एक एक प्लेट लाई जिसके ऊपर कैंडल रखा, कैंडल तो इजीली अवेलेबल है। उन्होंने कहा कैंडल से क्या करो, आरती करो। तो सबको बुलाया, हर एक के हाथ में वो दिया प्लेट और कैंडल, कहा कि ऐसे घुमाओ, इसको कहते हैं आरती करना भगवान की, ये अच्छी सेवा है। सारे वो अमेरिकन थे उन सबने ऐसे करना शुरू किया, उनको अच्छा लगा और साथ साथ क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और प्रभुपाद ने कहा जब आप मंदिर आओगे, उन्होंने पूछा और क्या करना चाहिए, यही तो है। जो आगे बढ़ना चाहता है वो हमेशा क्या करता है, पूछता है आगे कैसे बढ़ो। ऑफिस में पूछते हैं ना आगे कैसे, मुझे और उन्नति कैसे हो सकती है, मेरी प्रमोशन कैसे हो सकता है, उसके लिए हम तड़पते रहते हैं। तो वैसे उन्होंने पूछा और कैसे भगवान की सेवा कर सकते। प्रभुपाद ने कहा जब भी मंदिर आओ खाली हाथ नहीं आओ, कुछ ना कुछ जगन्नाथ के लिए लेके आओ।
तो उस समय देखा रोज सारे लोग आते थे, कोई फूल लेके आ रहा है, कोई फल लेके आ रहा है, कुछ ना कुछ तो देखा जगन्नाथ की सेवा बढ़ गई। फिर प्रभुपाद ने कहा आप भारत में साल में एक बार रथ यात्रा होती है तो आप लोग रथ यात्रा का आयोजन कर सकते हो। फिर उन्होंने पूछा कैसे, तो प्रभुपाद एक दिन बाहर मॉर्निंग वॉक जा रहे थे तो एक बड़ा सा ट्रक नजर आया जो ओपन था पीछे से। उन्होंने कहा ऐसी कोई ट्रक हो जिसके ऊपर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रखो और बड़ा सा फेस्टिवल अरेंज करो। तो उनके शिष्यों ने कहा, एक ने कहा मेरे पास ट्रक है मेरे घर में, और वो ट्रक ऐसा था कि ओपन था पीछे से। फिर उसको उन्होंने फ्लावर्स वगैरह लगाए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रखे, और कुछ माताएं थी जो नई नई जुड़े थी, बहुत पक्के थी सेवा में। उन माता ने कहा कि भारत में भारत का प्रसाद होना चाहिए, तो उनको लगा भारत में चपाती खाते हैं, खाते नहीं, इंडिया में चपाती खाते बहुत। उन माताओं ने रात भर हजारों चपातियां बनाई, क्या बनाए, कल रथ यात्रा में हम बांटेंगे। यमुना दासी और जदुरानी और ये सब माताएं थी उस समय की, इन्होंने चपातियां बनाए। और जब सुबह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को ट्रक के ऊपर रखा, पहला जगन्नाथ का भारत के बाहर ये पहला क्या था, रथ यात्रा था। और अभी अभी कुछ महीने हो गए थे प्रभुपाद को शुरू करते हुए, लेकिन वो सारे युवा युवती इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने स्टार्ट किया और फिर रथ को कीर्तन करते हुए ले गए और सारे फ्रूट चपातियां सबको बांटने लगे, और फाइनली एंड किया प्रसाद के साथ और लाउडली कीर्तन के साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जगन्नाथ देव इस भारत के बाहर गए और सारे जगत के लोगों के ऊपर उन्होंने कृपा की। तो आप सब भी फॉर्चुनेट कहलाए जा सकते हैं यदि आप सैटरडे जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव अरेंज कीजिए। कोई आपको चिंता नहीं, वहाँ आपके लिए ब्रेकफास्ट है और डिनर लंच सब कुछ है। तो आप जगन्नाथ की कृपा दो चीजों से प्राप्त की जाती है, एक है उनका प्रसाद ग्रहण करके और दूसरा है उनका दर्शन करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव के, विदित पावन श्रील प्रभुपाद के, कार्तिक महामहोत्सव की, जय गौ प्रेमानंदे।